तो अब हम आज का जो सबक देखेंगे इसकी तरफ आते हैं।
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور صالح عمل کرنے والوں کے ساتھ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بخشش دے گا اور ان کو بڑا اجر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھیں ویسے تو اللہ کی ہر بات ہی سچی ہے، لیکن جب وہ اپنا وعدہ کہہ دے تو پھر سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم سمے نہ واتانا کر کے ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کر لیا نا، جب ہم اس وعدے کو پورا کریں گے تو پھر اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ایک اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا سب کو جھٹلانا ایک بات ہی ہے، میں نہیں مانتی، میں اس کا انکار کرتی ہوں، استغفراللہ، مثلا عدل میں نے نہیں کرنا، ہم سے نہیں ہوتا عدل، آج کون کون سا عدل کا زمانہ ہے، یہ جھٹلانا ہے اللہ کی آیات، زمانہ ہے یا نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم نے کس لیے کرنا ہے، پہلی بات ہی ہمیں کیا کہی گئی، کونو قوامینا، کس لیے، للناس نہیں، للہ، اللہ کے لیے، تم نے تو اللہ کے لیے عدل کرنا، تم نے لوگوں کے لیے تو نہیں کرنا، لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، ہم اگر یہ کام کر دیں گے تو پھر ہم کیسے جیئیں گے یہاں پہ، نہیں، تم نے قوامین ہونا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کی آیات کو مت جھٹلا، ورنہ انجام کیا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہیم کے ساتھی ہیں، یعنی جہیم کے رہنے والے، کسی کے ساتھی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ہونا، مطلب جہنم کے اندر رہنے والے، جہیم جہم سے، اور جہم ہے لغوی معنی شیر کا گورنا، اس کو کہتے ہیں جہاں، جہنم بھی اپنے باسیوں کو گور رہی ہوگی کہ میں کب ان کو اپنے اندر لوں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سن لیں ایمان والو، کون کون ایمان والا ہے، سب جاگ جاؤ، اللہ کی پکار آئی ہے، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پہ اس نے کی ہے، کون سی نعمت یا اللہ، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ انہوں نے پھیلائے اپنے ہاتھ، ارادہ کیا کس چیز کا، کہ انہوں نے پھیلائے اپنے ہاتھ تمہاری طرف، یعنی تمہیں نقصان دینے کے، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، یہ کون سی قوم تھی، یہ مشرکین مکہ تھے۔ اور دیکھیں جس وقت اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، سورہ مائدہ نازل ہو رہی ہے، اینڈ کا ٹائم ہے، آپ کو میں نے بتایا یہ آخر کی وہ ہے، صلح حدیبیہ ابھی ہو چکی ہے، اور یہ سب آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کافروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کو ستانے کی، ان کو تنگ کرنے کی، کبھی عذاب کے موقع پہ آپ دیکھ لیں کیا کیا، جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے یہی حدیبیہ کے موقع پہ، تب کیا کیا، اور آگے پیچھے بھی کیسے مسلمانوں کو نقصان، ہر طرح سے شرارتیں کی، نقصان دینے کی، تو انہوں نے تو اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تم سے ہر ہر موقع پہ دشمنوں کی چال کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا، تمہیں محفوظ رکھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو یہ کہا گیا اپنے اسباب اختیار کریں، مگر یاد رکھیے اصل مدد اللہ ہی کی ہے جس سے کسی کو روکا جا سکتا ہے، یعنی تم اگر اللہ تعالی کی وعدے کو، اس کے ساتھ جو سمینا واتانا کا وعدہ ہے، اس کو یاد رکھتے ہو، تم اس کو نبھاتے ہو، اس نعمت کو یاد رکھتے ہو جو اللہ نے تمہارے پر کی، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہارے دشمنوں کو تم سے دور کر دیا اور ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات اب تفسیروں میں دیکھیں گے اس سلسلے میں بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کو بتاتی ہوں، جیسے بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر چکی کا پارٹ پھینکنے کی کوشش کی کہ آپ کو نیچے بٹھا کے کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں تو ہم ابھی آتے ہیں، اوپر سے جا کے قلعے کے اوپر سے کوشش کی کہ یہاں سے چکی کا پارٹ گرا دیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی اور آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح دیکھیں انہوں نے یہودیوں نے وہ یہودی عورت نے زہر دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، और कैसे दावत की और फिर अल्लाह ने आपको आगाह कर दिया, अल्लाह ने आपको बचा लिया। काब बिन अशरफ ने अपने साथियों के साथ मिलके एक प्लान बनाया आपको खत्म करने का, और आपको अल्लाह ने बचा लिया। इसी तरह एक आदमी था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे तो एक जगह पे पड़ाव किया सायादार दरख्त में, अपने हथियार उतार के, और नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो एक बद्दू आया, उसने आपकी तलवार अपने हाथ में ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खींच के कहने लगा, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आपने फौरन फरमाया अल्लाह बचाएगा, आप घबराए नहीं। उसने फिर यही सवाल किया, आपने फिर यही जवाब दिया, तीसरी दफा भी सवाल किया उसने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जवाब दिया, तो उसकी इतना उसके ऊपर यानी इस चीज की दहशत तारी हुई कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और फरमाया अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? तो देखें ये बात होती है कि अल्लाह है बचाने वाला, अल्लाह ने रोब उसके दिल में डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने हर मौके पे आपको बचाया, आपके साथियों को बचाया, मुसलमानों को बचाया। यानी वो इतना बड़ा लश्कर लेके आजाब में आ गए थे कि सारा अरब समझने इकट्ठा हो गया था मुसलमानों के खिलाफ, यहूदी कबीला भी उनके साथ ही मिल गया, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया? तो बताने का ये मकसद यहाँ पे है कि अल्लाह की नेमत को याद रखना, जब तुम अल्लाह की नेमत को याद रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें तुम्हारी हिफाजत करता है। वो तो साजिश करते रहे हैं और करते रहेंगे, वो करते रहेंगे हमेशा, उनके ये काम रहेंगे। वो पहली दफा नहीं, आज आप दुनिया में आए हैं तो आप कह रहे हैं देखो जी ये हमारे खिलाफ यहूद और नसारा कितनी साजिश कर रहे हैं, काफिर हमारे खिलाफ है फलां, ये आज नहीं साजिशें शुरू हुई, हमेशा से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कोई कम साजिशें नहीं हुआ करती थी। लेकिन मुसलमानों तुम्हें तवज्जो दिलाई गई, तुम याद रखो अल्लाह के एहसानात को, इनका चर्चा करो, शुक्रगुजारी करो, तुम अल्लाह की नेमत की का जिक्र करो। अगर नेमत का जिक्र करने से यानी इंसान अल्लाह के आगे झुका रहे, तो अल्लाह ताला के साथ जब तुम अपना वादा पूरा करोगे तो फिर अल्लाह देखो तुम्हारी मदद करेगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअल्लाह ही फलियतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें मोमिन, अपनी तलवारों पे नहीं, अपने सामान पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा, क्योंकि बचाने वाला तो अल्लाह ही। और देखो अब आपको मिसाल दी गई, पहले जमाने में कोई और भी कौम थी जिससे अल्लाह ने एक मिसाक लिया था, जैसे तुमसे लिया है ना, एक मिसाक लिया ना, अब समझ आ गई मिसाक कौन सा लिया, ये जो अभी मैंने आपको बताया आयत नंबर 7 में, वह मिसाक उल्लदी वासा का कुंभ ही इस्लाम का। चलो आपको से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इनको मिसाक लिया, लेकिन आपने जब कलमा पढ़ लिया, शहादतें, आपने शहादतें दे दी, दो इतनी बड़ी शहादतें कि हमने अल्लाह को अपना इलाह मान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लिया, इतनी बड़ी आपने गवाहियां दे दी हैं, तो आपने एक मिसाक कर लिया अल्लाह के साथ। तो अब ये हिस्ट्री में अल्लाह ताला ने दिखाया कि कोई और भी कौम थी जिसने अल्लाह से मिसाक किया था, अल्लाह ताला ने उनके साथ एक वादा लिया था, उनका क्या बना, उन्होंने क्या किया? अच्छा अब देखें आयत नंबर 12 को, वलकद अखद अल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। किस चीज का अहद? इताअत का ना, हर एक से इताअत का अहद लिया जाता है, ऐसे ही सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, सिर्फ बात होती, हर एक से इताअत का अहद लिया जाता है। उनकी भी तौरात उनको दी गई, उनसे भी अहद लिए गए, उनके नबी ने उनसे अहद लिए। अच्छा वबअथना मिनहुम उसने 10 नकीबा, और अल्लाह ताला फरमा रहे हमने मुकर्रर किए, अब मुकर्रर तो मूसा अलैहि सलाम ने किए थे, लेकिन कहा गया हमने मुकर्रर किए, क्योंकि जो पैगंबर की तरफ से काम होता है वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, तो हमने उनके अंदर 12 नकीब मुकर्रर किए, 12 उनके इंचार्ज बनाए, उनके 12 कबीले थे तो उनके ऊपर 12 उनके हेड मुकर्रर कर दिए कि अब जो अल्लाह की इताअत करानी है इनसे, जो इनको याद दिलाना है, जो इनको लेके चलना है इस रास्ते के ऊपर, तो आप लोग इसमें इनकी हेल्प करेंगे या आप इनकी निगरानी करेंगे, आप इनको वॉच करेंगे, यानी ये इनको नकीब बनाया गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 12 ही नकीब बनाए थे औसर खजरज के, जब आए थे ना वो आपसे बैत करने के लिए, तो उसके बाद इनके भी इंचार्जेस बना दिए थे। इससे फायदा ये होता है कि वो अपने अपने कबीले को लेकर चल रहे होते हैं, उनकी निगरानी कर रहे थे, निगरानी आसान हो जाती है, तो उनको शरीयत में चलाने के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, वो उनको डिसिप्लिन उनमें रखने के लिए, उनको वॉच करने के लिए, ये नकीब इसको कहते हैं, इंचार्ज को। तो आपकी भी नकीबात है ना, आपके भी तो ग्रुप पे एक नकीबा है, ठीक है। तो इसी तरह उनके भी 12 नकीब उनके बना दिए गए। وقال الله اني معكم, और अल्लाह ताला ने उनको फरमाया इन्नी माकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ का मतलब क्या, जहां पे भी अल्लाह की माइयत की बात आती है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ की बात आती है, याद रखें उसका मतलब होता है अल्लाह ताला की मदद। अल्लाह बजाते खुद अपनी जात के लिहाज से किसी के साथ नहीं है कि नऊज बिल्ला हम कहेंगे अल्लाह यहाँ पे है, मेरे साथ है कमरे के अंदर अल्लाह, नऊज बिल्ला हम कहते हैं अल्लाह की ताईद, उसकी नुसरत, उसकी हिमायत, उसकी मदद, कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी। लेकिन याद रखो एक बात, ये मदद मशरूत है, कंडीशनल है, तुम्हें भी कुछ करना होगा। मैं कब तुम्हारी मदद करूंगा, ला इन अकम तुम सलाता, अलबत्ता अगर कायम की तुमने नमाज। कायम नमाज करने का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि नमाज कभी पढ़ी तो कभी नहीं पढ़ी। कायम करना मतलब होता है नमाज जितनी अल्लाह ने फर्ज की है उन सब को उनकी पूरी शरायत के साथ अदा करना। नमाज की शरायत में तहारत भी आ जाती, जैसे हमने अभी बात की, नमाज की शरायत के अंदर और नमाज का मतलब तरीकाकार, उसके जगह, उसमें आपका जिस्म का पाक होना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो पूरी उसके साथ उसका वक्त भी इसमें आ जाता है, तो पूरे वक्त के साथ उसकी सारी शरायत के साथ तमाम नमाजों को अदा करना, ये है कायम करना नमाज का, कि तुमने नमाज को कायम करना, इसका मतलब उनमें भी नमाज थी। वह आते ही तुम उस जकात, और दो, दो अगर तुमने दी जकात, अगर सबके साथ आ रहा है, इन जो है ना वो सबके साथ है। नंबर टू उनको क्या कहा, अगर तुमने जकात दी, तुमने नमाज पढ़ी, वह आमन तुम भी रसूली, और ईमान लाए मेरे रसूलों पर, जितने भी रसूल मेरे आएंगे उन सब पे ही तुमने ईमान लेकर आना है, तो तब मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी। इन्होंने तो रसूलों को ही कत्ल कर दिया था, बताया था ना आपको पहले के नबियों को कत्ल कर देते थे, इनके अंदर तो एक के बाद एक नबी आता था, बहुत सारे नबी इनके अंदर आए, एक ही वक्त में भी बहुत सारे नबी होते थे। वह अज़र तुम हूं, और मदद की तुमने उनकी, मन तुम अलग है और अज़र तुम अलग है। अच्छा, अब अज़र तुम में एक माना मैंने आपको लिखवाया ताजीम का और एक मदद का। अच्छा, क्या होती है यहाँ पे नसर का वर्ड, वर्ड क्यों नहीं आया, वो भी तो मदद के लिए होता है। ताजीर का वर्ड क्यों आया, अज़र तुम हूं। असल में किसी नबी को नसर की जरूरत नहीं होती, मदद की जरूरत नहीं थी, जैसे हम मदद समझते ना। अब हम मदद किसको समझते हैं, हमारे यहाँ यहाँ पे जब मदद मांगी जाती है तो क्या होता है, मस्जिद में किसी भी इदारे में मदद मांगी जाती, तो या तो वो आपको कहते हैं आप जी डोनेशन दें, पैसे दें, या वो आपको कहते हैं कि जी आप आके काम करें हमारे पास, ताकि हमारे कामों में हमें मदद चाहिए। नबियों को की जो ताजीर का हुक्म है, ना तो उनको कोई पैसे चाहिए होते, ना उनको कोई लोग चाहिए जो आके उनके लिए कुछ, उनको कुछ बेनिफिट करें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माली मदद चाहिए थी, ना किसी की जिस्मानी मदद अपने लिए चाहिए थी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया वल्लाहु यासिमुक मिन अन्नास, अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट करेगा लोगों से, आपको किसी दुश्मन की उसकी जरूरत नहीं है फिक्र करने की, और माली मदद की भी आपको जरूरत नहीं थी, आप तो खुद लोगों को देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने खुद पूछा था कि आप नबी कैसे नबी बनना चाहते हैं, बादशाह नबी बनना चाहते हैं या अब्द नबी बनना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम की तरफ देखा, जिब्राइल अलैहि सलाम खामोश हैं और हाथ से इशारा किया, हाथ से मशवरा दिया था कि जैसे खुद को नीचे रखे, नबी या अब्दन, अब्द नबी मैं बनना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद इसको चूज किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई माल आ जाता था, फौरन उसको सदका कर देते थे। एक दफा नमाज पढ़ी और बड़ी तेजी से सहाबा कराम के कंधे फलांगते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए, लोग परेशान हो गए, पता नहीं क्या बात होगी। कुछ देर में आप मुतमईन वापस आए, सहाबा ने पूछा क्या हुआ या रसूलल्लाह, फरमाया मुझे ख्याल आया कि मेरे घर में एक सोने की छोटी सी डली पड़ी हुई, तो मुझे खौफ लाहूक हुआ कि कहीं मेरी मौत ना आ जाए और ये मेरे घर में पड़ी हो, तो मैंने इसको फौरन सदका किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देने वाले थे, आपको कोई डोनेशन नहीं चाहिए थे अपने कि मुझे लाला के देते रहो या मेरे बॉडीगार्ड्स बन जाओ, नहीं। तो फिर अज़र तुम का मतलब क्या है, मतलब है जो मिशन अल्लाह ताला ने रसूल के जिम्मे लगाया है
उस मिशन को तुमने आगे लेके चलना है, उस मिशन को। रसूल की कोई खदमत नहीं करनी, रसूल नहीं आप कहेंगे आज के तो आपके यहाँ पे कहते हैं ना जी वो बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमारी औरतों को भी अल्लाह अकल दे कि वो उन बुजुर्गों की जाके टांगे दबाती हैं, हमारे पीर साहब हैं उनकी टांगे दबा रही होती हैं जाके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैंने बैत की बात बताई है ना आपको, सूरह मुमतहिना में इसका जिक्र आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बैत भी लेते थे तो किसी औरत के हाथ को हाथ नहीं टच करते थे, कभी किसी औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टच नहीं किया, और ये टांगे दबाते हैं और कहते हैं ये बुजुर्ग हैं, ये हमारे पीर हैं। अंदाजा कीजिए आप, तो अगर हमारी औरतों को या उन बुजुर्गों को कोई जरा सी भी दीन की समझ होती तो ना वो ये काम करा रहे होते और ना ये औरतें ये कर रही होती। इसी से आपको अंदाजा होगा कि वो कितने बड़े ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हो सकते हैं। तो बात यह कि अब बनी इसराइल को भी क्या कहा गया कि जो मिशन अल्लाह ने रसूल के जिम्मे लगाया उस मिशन में उसके साथ खड़े हो जाना है आपने, ठीक है। ये रसूल का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, जो अल्लाह ने रसूल को दिया उस मिशन को तुमने आगे लेके चलना। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना जो मौजूद है वो इस दीन को हर उस शख्स तक पहुंचाए जो यहाँ मौजूद नहीं है, और सहाबा ने बेहतरीन तौर पे ये अजरतुहुम का काम किया। उन्होंने कैसे किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को लेके आगे ताबईन तक पहुंचाया, उन्होंने तबा ताबईन तक पहुंचाया। आज ये दीन हमारे तक पहुंचा है, किसी की मेहनतें थी तो पहुंचा है ना, अब हमारी जिम्मेदारी है हम अगली नस्ल तक पहुंचाए और उन सब लोगों तक पहुंचाए जिन तक नहीं पहुंचा है, जो हमारे जमाने के हैं या और जो हमारी अगली नस्ल है। और कोई भी इस दुनिया में ना वाकफियत की मौत अगर मरता है, आप किसी का जनाजा देखते हैं ना, कोई काफिर है उसके साथ जनाजा आप देखते हैं, सोचा कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से किसी के ऊपर किसका भी बवाल हो कि अगर ये ना वाकफियत की मौत मर गया तो, ना अगर इसको पता था और ये इसी में मर गया तो फिर कोई मसला हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर इसको नहीं पता और ये दुनिया से चला गया है तो इसका बवाल किस पे है फिर, उन पे है जिन तक ये दीन अल्लाह का पहुंचा है मगर वो उसको खुद लेके बैठ गए और आगे तक नहीं पहुंचाए। आप चाहे ईस्ट में रहते हैं, चाहे वेस्ट में रहते हैं, चाहे मुसलमान मुल्क में रहते हैं या गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप आगे तक पहुंचाएं इस दीन को, इसको कोई ना वाकिफ ना मरे, वरना बबाल खास तौर पे जो गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं उनके ऊपर तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। हमने ये रामा पीस का शुरू किया इसीलिए आप लोग कहते हैं इसके अंदर आए सीखें, दावा की टेक्निक सीखें, दावा का तरीका सीखें और फिर ये इसको आगे फैलाएं इस पैगाम को, ये ना हो कि हमारी पूछ हो जाए क्यामत के दिन। वह अकरद तुम्ला कर्दन हसना, और कर्ज दिया तुमने अल्लाह को कर्ज हसना। अब कितनी ये बातें हो गई, पांच बातें हो गई ना, अल्लाह को कर्ज हसना देना क्या है, ये इसका मतलब ज़कात से अलग चीज है। बाज उलमा ने कहा यह सदका और खैरात है, यानी आप सिर्फ ज़कात दे के आराम से नहीं बैठ सकते हम ज़कात दे रहे, नहीं अब आप इसके बाद सदका और खैरात भी करें, और फिर खास तौर पे मुराद है कर्ज हसना से अल्लाह को कर्ज देना, यानी अल्लाह के दीन के कामों में खर्च करना। कहीं मस्जिद नहीं है उस मस्जिद को बनाने के लिए खर्च करना, कहीं अल्लाह के दीन को सीखने के लिए कोई इदारा नहीं है, कोई मदरसा नहीं है तो वहां पे इसके अंदर खर्च करना, कहीं दीन को पहुंचाने के लिए कोई फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए खर्च करना, ये सब है कर्ज हसना। इसको कर्ज हसना कहते हैं, ये जकात नहीं है, और इसको खुशी से अदा करें, दें इसको अल्लाह के रास्ते में खुशी से। तो अब हमें पता चलता है कि हम देखें ये पांच शराइत हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी। ये उस वक्त बनी इसराइल से भी कहा गया, ये रहती दुनिया तक दूसरी उम्मतों के लिए भी यही है, यानी जो भी उम्मत आई आएगी अगली तो उम्मत मुस्लिमा ही है, उसके लिए भी यही शराइत है, तभी अल्लाह की मदद आती है। ये नहीं कि उनके साथ कुछ और था, हमारे साथ कुछ खसूसी सलूक है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी आएगी, चाहे हम नमाजें पढ़े ना पढ़े, हम नमाजें छोड़ भी दें, कलमा तो पढ़ते हैं, और ज़कात देने को छोड़ो, वैसे ही लोग खा जाते हैं किसी को नहीं जरूरत, और ऐसे और अल्लाह के दीन का काम करना क्या मेरी जिम्मेदारी है, क्या मैं ही इसके लिए कुछ करूं, कुर्बानी देना तो दूर की बात है, तो जरा सा टाइम निकालना भी किसी के लिए मुश्किल है। वो तो कुर्बानियां जो सहाबा ने दी उसका तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना, कि जब उन्होंने कहा था मदीना ने कहा था कि या रसूलल्लाह अगर आप हमें कहेंगे कि हम अपने घोड़े समुंदर के अंदर डाल दें आपके पीछे तो हम वो भी करेंगे, हम मूसा अलैहि सलाम की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि मूसा जा तू और जा तेरा रब जाके लड़ और हम नहीं, हम यहां बैठे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया था बनी इसराइल। तो अल्लाह की मदद फिर सहाबा के साथ आई ना, क्योंकि उन्होंने ये काम किए, उन्होंने नमाज को कायम किया, उन्होंने जकात का निजाम बनाया, उन्होंने रसूल के ऊपर ईमान भी लाए और उनकी ताजीम भी की, उनकी मदद की इस तरह कि उनके मिशन में लग गए, अपनी जिंदगियां खपा दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी आप दुनिया में देखें सहाबा की कब्रें कहाँ कहाँ किन किन मुल्कों में है, वो वहां पे क्यों गए थे, वहां पे पढ़ने के लिए नहीं गए थे, बिजनेस नहीं करने गए, वहां की सिटीजनशिप लेने नहीं गए, वो वहां पे दीन का पैगाम लेकर गए। और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कैसे खर्च किया वो तो आप सबको पता है कि जो मिसालें हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपने घर का पूरा सामान ले आए, हज़रत उमर कैसे आधा सामान ले आए, एक सहाबी थे पूरी रात उन्होंने एक यहूदी के पास मुलाजमत की, और फिर जो चंद एक खजूरें मिली वो लाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में देने के यही मेरे पास है। तो आप अंदाजा कीजिए उन लोगों ने ये कायम किया तो अल्लाह की मदद भी उनके साथ आई। फिर कहाँ हजरत उमर के दौर तक 3 कॉन्टिनेंट्स में इस्लाम पहुंच चुका था, कहाँ कहाँ तक, 3 बर्र-ए-आज़मों तक इस्लाम की हुकूमत थी, अल्लाह की मदद थी, कैसे डंका बजता था मुसलमानों का दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम ये करोगे ना उकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह तुमसे दूर कर देगा तुम्हारी सय्यिआत। सय्यिआत से बुराइयां तो हमने लिख लिया, इसके दो माने, दो तरह की सय्यिआत होती है, एक मुसीबत को भी सय्यिआ कहते हैं और गुनाह को भी सय्यिआ कहते हैं, यानी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा और दुनिया में तुम्हारी मुसीबतें भी दूर कर देगा। अब तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारी मुसीबतें दुनिया की दूर हो गई और आखिरत में तुम्हारे गुनाह मिट गए, और वाला जरूर दाखिल करेगा अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही। ये किसके साथ वादा है? हाँ ये किसके साथ वादा है कि जो कायम करे नमाज, जकात दे, रसूल पे ईमान लाए, उसके मिशन में खड़ा हो जाए। आज रसूल नहीं उनका मिशन तो है कि नहीं, रसूल अपने फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन उनका मिशन तो है ना, कौन है लोग उसके लिए खड़े होने वाले, अपनी जिंदगियां लगाने वाले, अपना टाइम देने वाले, और कौन है जो अकरतुल्लाह कर्दन हसना, जो इसके लिए अपना माल भी लुटाने वाले, वो कहाँ है लोग? अव्वल ने तो नमाज ही छोड़ दी, जकात देना भूल गए। अगर जकात दी जाती होती ना मुसलमानों जैसे जकात जितनी देनी चाहिए और सभी जकात देने वाले होते तो कोई गरीब ना होता हमारे मुल्क में, लेकिन जकात नहीं दी जाती और जकात मुसलमानों से ही लेके मुसलमानों को दी जाती है, क्योंकि उन मुसलमानों से ली जाती है इसलिए देनी भी मुसलमानों को ही, तो किसी को भूखा सोना चाहिए फिर क्यों ऐसे हालात? क्योंकि जकात नहीं दी जा रही। और फिर दीन को तो कोई अपना काम समझता ही नहीं, ये हमारी ड्यूटी है क्या? वो मौलवी करें, वो करें, उन जो जो फारिग लोग हैं वो करें, हमें तो जॉब करनी है। जॉब के लिए हर औरत खड़ी हुई है और उसके पास टाइम भी है, चाहे बच्चे को डे केयर में डाले, चाहे वो अपने घरों के लिए कोई काम के लिए मदद के लिए किसी को हायर करे, चाहे कुछ भी करे, हर एक के पास वक्त है कि वो जाके जॉब करे। आज आप किसी औरत को ऑफर करें कि आपको इतने की जॉब मैं देती हूँ, कोई औरत ये नहीं कहेगी नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है जॉब करने का, हर औरत खड़ी हो जाएगी हाँ मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। लेकिन दीन के वक्त में जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है उसको आगे लेके चलने में हर एक के पास एक बहाना है, मेरे पास टाइम नहीं, फिर सब किस्म के जो जिम्मेदारियां हैं वो याद आ जाती, फिर कोई औरत नहीं कहती मैं मैनेज कर लूंगी। तो मुझे बताएं फिर वो क्या से हमारे से दूर करेगा अल्लाह हमारी मुसीबतें? फिर मुसीबतें तो आएंगी ना, सय्यिआत तो आएंगी, अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम ये करोगे ना फिर मैं दूर करूंगा तुम्हारे से तुम्हारी। आज आप अपने माशरों में देख लें, अपने मुसलमानों में देख लें, होना तो ये चाहिए जब अजान हो तो एक बंदा भी आपको स्ट्रीट में नजर ना आए, एक दुकान खुली भी ना नजर आए, लेकिन बाजार भी भरे रहते हैं, अजानों पे अजानें हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाजार भरे में क्राउडेड है, एक मिनट के लिए भी कोई दुकान बंद नहीं होती।
एक मिनट के लिए भी कहीं सन्नाटा नहीं छाता। चलो सारे नहीं, चलो 50% ही कम हो जाए, 50% भी आबादी ऐसी नहीं है जो नमाज की पाबंद हो आपकी। तो फिर किधर की आपकी कायम हो रही है नमाज? आप बाजारों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, घरों में देख लें, कोई तीन पढ़ता है, कोई दो पढ़ता है, कोई चार पढ़ता है। फजर तो हमसे पढ़ी नहीं जाती, उसे तो उठा नहीं जाता, ये कायम होना तो नहीं है नमाज। तो ये वादा अल्लाह ताला की मदद का तबका है, अब समझ आई बात? और हम कहते हैं अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, हाय हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह की मदद कहाँ गई? दुनिया में मुसलमान कट रहे हैं, पिट रहे हैं, बच्चे मुसलमानों के हैं जो यतीम हो रहे हैं, बच्चे मुसलमानों के हैं जो जो सड़कों के ऊपर खून मुसलमानों का बह रहा है। पूरी दुनिया में देख लें आप, कैसे मुसीबतें दूर होंगी, कैसे अल्लाह की मदद आएगी? आप रोते किस बात में हैं जब ये पांच चीजें ही नहीं पूरी हो रही और कोई नहीं है जो उठने को तैयार हो, जो कहने को तैयार हो कि हाँ हमें जो रसूल की मिशन की मदद करेंगे, हम है जो रसूल के साथ खड़े हैं, हम है जो कर्ज देंगे अल्लाह को, हम है नमाज कायम करने वाले माशरे, और हम है ज़कात देने वाले। और ईमान लाने में भी, ईमान लाना सिर्फ जुबानी कलामी नहीं है कि आप मिलादे कर लेंगे ईमान हो गया हमारा, आप जुलूस निकाल लें सड़कों पे, आप वो डिफरेंट तरह की शेप्स के वो बना के और जी लेके चने में और हार पहने में, और क्या ये तमाशा है? ये रसूल पे ईमान है? ईमान नाम है फरमा बरदारी का। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे लेकिन उनका ईमान नहीं था। आपको रसूल मानना, आपकी इताअत करना, ये है ईमान। तो ये मोहब्बत के दम भरते रहे हम जितना मर्जी, लेकिन अगर उनकी इताअत ही नहीं है जिंदगी में तो फिर पमन का फरा। तो इसको अगर समझो कि वो ये ऑप्शनल है, हम तो ये नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते, पमन का फरा। तो फिर जो इससे फिर जाए, इस मुआहदे को तोड़ देता है, इसका इनकार कर देता है, बाद को इसके बाद कि उसने ये कर लिया, इसके बाद कि ये मिसाक उसने कर लिया है, उसके बाद उसने ये काम नहीं किए, ये पांच काम जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, जिसका पुख्ता अहद लिया, जिसके पर कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये पांच काम नहीं किए, उसके बाद क्या? फकद असबीर, तो तहकीक वो भटक गया सीधे रास्ते, हक रास्ता जो था अल्लाह ताला माफ फरमाए उससे भटक गया। तो अब आप सोच लें कि फिर हम किधर भटके हुए में तो नहीं, ये फिर थे कि इनके साथ फिर क्या हुआ? अच्छा अब ये चलो इसको बहुत लाइटली लिया, नहीं इसको कोई बड़ी चीज समझा, कौन अब मीसाक का सोचता फिरे, हमें तो अपनी दुनिया बनानी है, हमें गाड़ी लेनी है, घर बनाने हैं, हमें ये करना है, हमें अपने बच्चों की फीसें देनी है, हमें फलां करना है, हमसे नहीं ये काम होते, ना हमारे पास नमाज का वक्त है और ना ज़कातें निकालने का। तो क्या इस मीसाक को कोई कुछ नहीं समझता, तो फिर क्या होगा, क्या होता है फिर इसकी क्या? चलो अगर करता है फिर तो ठीक है, ये सब हुआ, कोई बंदा कहता मैंने नहीं किया या मैं नहीं करता, फिर क्या है? कोई सजा है इसकी? यही है सजा जो आगे आ रही है, अभी मान कदीम मीसा का। तो बवजह उनके तोड़ने के, इनके अहदों को, इन्होंने जो अपना अहद तोड़ दिया अल्लाह के साथ, जो अहद किया हुआ था, लअन्नाहुम, लानत कर दी हमने उन पर, यानी अल्लाह की लानत ऐसे ही पड़ जाती। जब कोई कौमें अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ती हैं तो लानत की मुस्तहिक हो जाती हैं। लानत क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह की रहमत नहीं रहती। और आप सिर्फ अगर आप एक दफा दुनिया पे नजर डाल के देखें, आपको साफ पता चलेगा कि उम्मत मुस्लिमा पे अल्लाह की रहमतें हैं इस वक्त कि लानत पड़ी हुई, आपको साफ पता चलेगा। लानत, रहमत नहीं है, कहीं अल्लाह की रहमत नहीं नजर आ रही मुसलमानों के ऊपर। और ये किस चीज की वजह से? ये नतीजा है इस चीज का कि हमने अल्लाह से किया हुआ मीसाक तोड़ दिया है। हम कुछ समझते ही नहीं कि हमने कोई अल्लाह से वादा किया हुआ, इस्लाम लाके हमने क्या कमिटमेंट कर ली है, हमने कोई कभी इस चीज के तक ध्यान ही नहीं दिया, कभी इसको कुछ समझा ही नहीं है। कितने मुसलमान हैं आप मुझे बताएं? चले आज आप तो ये समझ रहे हैं, आप मुझे एक सर्वे करके बताएं। आप किसी मजलिस में जाती हैं ना, तो आप ये पूछें मुझसे, जरा किसी से बात करती हैं जो अभी ये आपकी क्लास में नहीं हो,
कुरान से नहीं जुड़ा। आप जरा उससे पूछ के देखिए कि एज मुस्लिम आप बताएं कि क्या आपका कोई वादा है अल्लाह के साथ, क्या आपकी कोई कमिटमेंट है, कि कुछ लोगों को एहसास भी है कि नहीं, उनको पता भी है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि लोगों को कुछ शऊर नहीं है इस बारे में। वो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते कि हम कोई मुसलमान है तो हमारे पर कोई जिम्मेदारी है, हमने कोई वादा किया हुआ है, हम किसी मीसाक में बंधे में। तो लानत करती है, और लानत की वजह कुलूबहुम क़ासिया, और इस लानत का नतीजा क्या है, उनके दिल सख्त हो गए, संग दिल हो गए। जब दिल संग दिल में सख्ती आ जाती है ना, दिल पत्थर हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, बातें अल्लाह की बात असर नहीं करती, फिर तौबा की तरफ इंसान नहीं आता, फिर दिल नरम ही नहीं रहता। बात क्या असर करेगी, वही वाली बात है ना कि दिल पे काले नुक्ते लगते जाते हैं, ताकि दिल इतना काला स्याह हो जाता है कि उस पर कोई बात ही नहीं असर करती, दिल जिंदा नहीं रहता, मुर्दा हो जाता है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, दिलों की सख्ती से अल्लाह माफ फरमाए। तो ये दिल फिर क्या हो जाते हैं, कासिया हो जाते हैं। और कासिया असल में कसिया कहते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, कसिया कहते हैं उस सिक्के को जिसमें खोट मिला होता है, कसिया होता है वो सिक्का जिसमें खोट मिला होता है। ठीक है, आप देखिए सुनार जो है ना, वो सोने को जोड़ने के लिए उसमें खोट डालते हैं, मिलावट करते हैं, तब वो जुड़ता है और तब वो सख्त होता है, वरना तो वो नरम होता है। तो जो खालिस होता है वो नरम होता है, और जिसमें खोट होता है वो उतना ही सख्त होता जाता है, इसीलिए कासिया। अल्लाह हो, पर दिल का भी यही हाल है ना, जब खालिस ईमान वाला दिल होता है तो वो नरम होता है, जिसमें खोट आता जाता है वो सख्त होता जाता है। तो ये दिल की सख्ती एक साइन है कि इसके ऊपर लानत हुई भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, ज्यादा बातें ना किया करो, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें जो अल्लाह के जिक्र के बगैर होती हैं उनसे दिल सख्त हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना गपशप होती है, तो गपशप जब करते हैं उसमें कहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, लतीफे होते हैं, हंसी मजाक, गइबतें, इधर उधर की बातें, चुटकले, फलाने ने ऐसे किया, ये किया, ये किया। तो उसमें आप देखें इस तरह की बातें हैं, बहुत देर जब हो तो उससे दिल सख्त हो जाता है। तो फरमाया ज्यादा ऐसी बातें ना किया करो। तो इसका मतलब है कि जब भी हम बैठे बातें करने के लिए, तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं, चाहे मौजू है या नहीं है, कहीं ना कहीं अल्लाह का जिक्र जरूर अंदर ले आया करें, कहीं ना कहीं, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, हाँ अल्लाह ने ये फरमाया, इसके रसूल ने ये फरमाया, या कोई ऐसी बात कर लें। तो अपनी गपशप की मजलिसों में भी सिर्फ और सिर्फ और बातों पे ना तवज्जो दें, ये कि अल्लाह का जिक्र ही ना हो कहीं, और बातें चलती जा रही है, पूरी रात गुजर गई है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, रसूल का जिक्र नहीं है, इससे कहीं दिल सख्त ना हो जाए। ठीक है, तो यू हर रिफून अल कलीमा अम्मवादी, और उन्होंने क्या किया फिर, इसका नतीजा क्या हुआ, जब लानत पड़ गई तो फिर इतने दिल सख्त हो गए कि उनको इतनी भी नहीं शर्म आई कि अल्लाह का कलाम है, हम इसके अंदर चेंजेस ना कर। उन्होंने फिर, जाहिर है जब दिल सख्त हो जाते हैं तो अल्लाह का कलाम भी कोई उनके लिए वैल्यू नहीं रखता, फिर अल्लाह के कलाम में भी उन्होंने चेंजेस की, उसमें कहीं माने बदल दिए, कहीं अल्फाज बदल दिए अल्लाह ताला के कलाम के, अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो उन्होंने इस किस्म की हरकतें की, क्योंकि तौरात वगैरह में तो अल्फाज भी बदले हैं ना, कुरान में अल्फाज नहीं बदल सकते, इन्होंने माने ही बदल दिए, अपने मन माने माने कर दिए, जिसका जो दिल किया आज खड़ा होकर अपना माना करने लगता कुरान का, हालांकि कुरान का माना वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। वो कहते हैं हम हदीस को ही नहीं मानते, जब हदीस को ही नहीं मानेंगे तो कुरान की तशरीह खुद ही करेंगे ना, फिर खुद ही बताएंगे ना। इससे भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि आज ऐसे ऐसे लोग हैं, देखिए हमारे उस्ताद हम एक बात कहते हैं, वो कहते हैं बाज लोग तमाशाई होते हैं, तमाशाई ऐसे होते हैं, वो जिधर कोई बता रहा है ना कोई, उसके पास जिधर कोई तमाशा दिखा रहा है उसके पास खड़े हो गए, तमाशाई वही होता है। तो वो कहते हैं जिसके को भी कोई बात बता रहा होगा उसके पास जाके सीखना शुरू कर देंगे। अच्छा दीन का उनको ये नहीं होता कि मेरे दीन का मामला है, मैं केयरफुल रहूं, मैं किससे दीन ले रहा हूं, जिधर किसी ने कोई बात बताई उधर खड़े हो गए, उधर उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम कहां से दीन लेते हैं,
हमें केयरफुल होना चाहिए, जो हमें बताने वाला है इसका अकीदा भी सही है कि नहीं, कहीं नया ना हमें गुमराही कर दे। ये कुरान और हदीस से ही बात बता रहा है कि इधर उधर की ही बता रहा है? तो युहर्रिफून अल कलेम अन मवादिहि, वो उसके माने बदल देते थे। वनसू हद्दम मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और वो भूल गए एक हिस्सा उसमें से जो वो नसीहत किए गए थे, यानी जो उनको दीन दिया गया था उसका एक हिस्सा भूल ही गए, इल्म का एक हिस्सा भूल गए वो। इससे पता चला कि जो लोग अल्लाह के साथ मीसाक को तोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उनसे इल्म उठा लेता है, इल्म का एक हिस्सा उनको भूल जाता है, इल्म ही उठ जाता है, इल्म ही उनको याद नहीं रहता। और ये भी एक बड़ी लानत की बात है ना कि अल्लाह की रहमत से दूर है, ये अल्लाह की रहमत है उसका इल्म, फिर वो क्या बन जाते हैं, एक हिस्सा उठ गया तो आधे तीतर आधे बटे, आधा किया कुछ किया। यानी उठ जाने से मतलब क्या है, जब उनको भुला दिया गया, अल्लाह भुला देता है उनको, इल्म भुला देना, तो इल्म उनको भूल जाने का मतलब ये है कि वो उस पर अमल ही नहीं करते, इल्म ही भूल गए। और ये भी एक सजा है अल्लाह की कि जो इल्म अता किया गया वो उसका एक बड़ा हिस्सा इंसान भूल जाए। तो जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी की तरफ आता है ना, तो इल्म सीने से निकल जाता है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें माफ फरमाए। अल्लाह ताला जो इल्म हम ले रहे हैं इसको हमारे सीने में अल्लाह महफूज रखे। तो ये भी अल्लाह की नाराजगी की निशानी है। वला तजालु तत्तलि वला खाइनतिन मिनहुम, और आप हमेशा ही इनकी कोई ना कोई, इनकी खबासतें इनकी खयानतें आप तक पहुंचती रहेंगी, इनकी कोई ना कोई बात आपको पता चलती रहेगी। यानी अब ये इनका नॉर्म बन गया, अब इनको शर्म भी नहीं आती, अब इनके लिए ये रूटीन की चीज बन गई, इसलिए आपको इनकी कोई ना कोई खयानतें पता चलती रहेंगी। अब जैसे कि इन्होंने क्या किया था, इनकी बड़ी एक खानदानी औरत ने, किसी ने जब जिना कर लिया तो ये आप के पास आएगी इसका फैसला कर दें, तो आप बताएं कि इसका क्या फैसला होगा। तो आपने फरमाया तुम्हारे पास इसका क्या है फैसला, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ये है कि भाई मुंह काला करके गधे पे बिठा के और शहर में घुमाया जाए, बस ये है जो जिना करे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बैठे थे, उन्होंने कहा इनको कहीं अपनी किताब लेकर आए, जो किताब लेकर आए तो ऊपर देखें इतनी ये इतने दिल इनके सख्त हो चुके, इस तरह लानत के में पड़ चुके थे, इनकी कितनी बेशर्मी की बात थी कि उनका जो आलिम था उसने वहां पे जहां पे रजम की सजा लिखी हुई थी, ये जना की सजा रजम लिखी हुई थी, उसको अपनी उसके ऊपर उंगली रख ली और बाकी इर्द गिर्द सारा पढ़ता जा रहा है वो नहीं पढ़ रहा। आपने फरमाया अपनी उंगली उठाओ तो नीचे वो सजा लिखी हुई थी। कितनी ढिटाई है अल्लाह के कलाम में रद्दो बदल करना, अल्लाह के कलाम में खयानतें करना। इल्ला कलील मिन, सिवाय बहुत थोड़े इनमें से। देखिए ये है फिर अदल की बात, अल्लाह ताला कहते हैं सारे नहीं, थोड़े इनमें ऐसे भी हैं कि जो सही है वो इस तरह के काम नहीं करते। फाफु अनहुम वस्फा, अब होना तो ये था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे नफरत करते इस बात के ऊपर, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फाफु आप माफ करें, दरगुजर करें, इनको इग्नोर करें। इन्नल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करता है, एहसान का रवैया अल्लाह को पसंद है। यानी इन जैसे वो कर रहे हैं उनके जैसा रवैया उनके साथ नहीं, बल्कि आपने एहसान का रवैया करना। अदल तो ये है ना कि इनके इनके बदले में वैसा ही किया जाए, लेकिन एहसान ये है कि वो गलत भी कर रहे हैं लेकिन आपने फिर भी अच्छा करना है। और जो बड़े लोग होते हैं, जो अजीम लोग होते हैं, वो ही मुहसिन होते हैं। ये आम लोग, हमारे जैसे लोग जिनके जरा जरा सी बातें दिल में रख के बैठ जाए और वो उसने मुझे ऐसे कहा, अब फिर मैं क्यों उसके साथ फिर अच्छा करूं, वो याद नहीं है उस वक्त उसने ये किया था, तो वो तो फिर अदले के बदले ही देते रहते हैं, तो फिर वो मोहसिन नहीं बन सकते। मोहसिन वो बनना बहुत बड़ी चीज होती है, मोहसिन तो पी जाना दूसरे की बात को और खुद बड़ा बन जाना, उससे ऊपर उठ के दूसरे के साथ मामला करना, वो मोहसिन का काम होता है। और जिनके दिलों में तल्खियां ही भरी रहे, जिनके दिलों से इंतकामी जज्बात ही कभी नहीं खत्म होते, वो क्या मोहसिन बनेंगे, वो तो बस इंतकाम लेने पे ही रहेंगे ना। फलाने वक्त का याद नहीं है, फलाने वक्त में ऐसा हुआ था, फलाने वक्त में, वो उन्हीं चीजों को याद करते रहते हैं, वो उसके बदले ही लेते रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है, तो आपने मोहसिन बनना है। तो इनके इस रवैये के बावजूद जो इनकी शरारतें जो इनकी साजिशें उसके बावजूद आपने फाफ वन हूं बस ये करना।